नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का ये निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दिल्ली सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट चिकित्सा सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कार्य योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नई परियोजनाएं, पुराने संस्थानों का विकास और स्नातकोत्तर व उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों का विस्तार शामिल है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई हैं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ढह गया। भरमौर इलाके की बलोथ ग्राम पंचायत में अचानक आई बाढ़ लोहे के पुल को बहा ले गई, जिससे लगभग 50 तीर्थयात्री फंस गए। ये सभी लोग भरमौर में मां भगवती खुंडी वाली मंदिर जा रहे थे। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने दुनिया के नंबर एक चीन के खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियू की को हरा दिया। पुरुष एकल के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने एक रोमांचक मैच में शियू की को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। महिला एकल में पीवी सिंधु और महिला युगल में त्रिशा जौहली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी दूसरे राउंड में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।